संत अप्तमानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। सातवीं कथा चल रही है अपनी, जिसकी टीका के बारे में अपन ने कल कहा था कि जिसमें लिखा है पहली ही पंक्ति में कि इस ज्ञायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो। क्या मतलब? माने कर्म के बंधन से, बंध से ज्ञायक भाव में कोई अशुद्धि नहीं होती है, ऐसा कहना चाहते हैं वो। वो कहते तुम उसकी क्या बात करते हो यहां, है ना? ये तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भी व्यवहार कह करके उसे भी हे बता रहे हैं, है? तुम उसकी कहां की बात करते हो, है ना? अरे हम तो उस आमनाय में हैं, बुंदेलखंड की वो आमनाय, पंडित टोडरमल की वो आमनाय, कि जिस आमनाय में हम भगवान के मंदिर में दीपक की जगह चटक चढ़ाते हैं, वो दीपक जलाने में भी पाप समझते हैं, है? शुक्रवार के दिन ये जो है ना यहूदी लोग, ये लाइट नहीं बुझाते, डॉक्टर साहब जलाते भी नहीं, इसलिए क्योंकि बुझाएंगे तो उसके एक केंद्रीय जीव की हिंसा होती है, मरते हैं वो। मुनि लोग अंतराय भी मानते, बोले उसके बोली। अब देखिए, अभी एक जैसे दीपक जलाने में हमको इतनी हिंसा लगती है तो उनमें क्या होता होगा, जिसे अपनी बात बोलते हैं ना। तो ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि तुम राग बंध की इसी बातें करते हो, कि राग देश में ऐसे भगवान आत्मा में अशुद्धि होती है कि नहीं होती, उस पर बहस करते हो और उसमें दो दो भेद डालते हो कि ये राग अच्छा राग, ये बुरा राग, क्यों? ये ऐसा नहीं है कि हम किसी से कहें कि 100 पाड़ों में से एक पाड़ी छांट दो। है कोई होशियार इतना यहां पर? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पाड़ा समझते हैं, भैंस के बच्चे को बोलते हैं पाड़ा, और पाड़ी बोलते हैं भैंस की बच्ची को। तो हम 100 पाड़े खड़े कर दें, माने 100 लड़के खड़े कर दें, और फिर उनमें से कहें कि जो होशियार से होशियार आदमी हो आए और उनमें से एक लड़की छांट दे, इनमें से हमें पर एक ही चाहिए, ज्यादा नहीं है। और जो आए तो मैं करूंगा ये काम है कि भैया उसको तो मूर्खों के सरदार का एक वो क्या क्या दोगे, सर्टिफिकेट दे दो। तो राग हमारा वितरागी धर्म, और उसमें राग में भी अच्छे और बुरे के भेद जो करे उसे कौन सा सर्टिफिकेट देना चाहिए? तो कहते राग से भगवान आत्मा की अशुद्धि नहीं होती, बंध पर्याय माने राग दे भाव बंध है ना, उसके अशुद्धि की बात तो दूर ही रहो। माने ये चर्चा हम यहां टोडा मरसमा की बाउंड्री में करें कि राग बुरी चीज है, क्यों? सब हमें स्वामी जी ने बताया, क्या बताया स्वामी जी ने? हमारे तो पिताजी रोकर की बही लिखते थे, सबसे ऊपर वितरागा नमा लिखते थे। हमारे पिताजी तो कभी चिट्ठी लिखते थे तो ऊपर वितरागा नमा लिखते थे सबसे पहले, क्यों? चाहे मरे की चिट्ठी हो, चाहे शादी की चिट्ठी हो, हैं? लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ये तो हमारे खून में है। वो बच्चन था ना, बच्चन, तुम्हारा बच्चन नहीं, हमारा बच्चन, तुम्हारे बच्चन में हमारे बच्चन में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे बच्चन का भाव हरिवंश राय बच्चन, तो उसकी मैंने कविताएं सुनी। आपके विदिशा में कॉलेज में कोई फंक्शन था, वो आया हुआ था, मैं भी भाग्य से वहां था, अपना शिविर चल रहा था डॉक्टर साहब, तो उसने एक पंक्ति सुनाई कि हमें पीने की क्या जरूरत है, वो मधुशाला है ना उसकी, हमारी तो 7 पीढ़ियां पीती आई हैं, तो जितनी तुम 3 बोतल पी के नशा करोगे उतना नशा तो हमारे खून में ही है। क्यों? ये तो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, रोकड़ में, बही में, चिट्ठियों में। मैंने अपने घर के दरवाजे पर दीपावली पर दरवाजे पर वितरागा नमा लिखा देखा है कि नहीं? ये तो हमने जन्म घुटी में पिया है, इससे कोई गुरुदेव जी का उपकार कोई कम हो जाता है इसके लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहता रहा हूं कि हमारे तो जो खासकर अपना हमारा ये एरिया है, ये पूरा बुंदेलखंड और दिल्ली से देहरादून तक के सारे अग्रवाल लोग हैं, और ऐसा बहुत बड़ा एरिया है कि जिसमें दीपक भी नहीं जलाया जाता है, और इतनी कट्टरता। मेरा गांव तो सबसे ज्यादा कट्टरों में था। मंदिर के बर्तन माली से नहीं साफ कराए जाते थे। हमारी मां जाती थी और हमारे 7 दिन बंधे थे, हमारे गांव में 7 घर थे, कि एक दिन एक बर्तन साफ करेंगे मंदिर में, एक एक करेंगे, एक एक करेंगे। और राख से बर्तन साफ नहीं होते, साबुन वाबन तो बहुत दूर की बात है। ये ईंट है ना गुम्मा, इसको इसका चूरा बनाकर उस चूरे से साफ होते थे। है? अभी भी ऐसे ही होगा। किरकिरा वो समझ लो, जो भी आप समझ लीजिए, तुम समझ तो गए ना कि गुम्मे का चूरन कैसा होता होगा, बस समझ लीजिए। लाल लाल दंत मंजन जैसा हमने ये अपनी आंखों से देखा है। पर हमारे इस जयपुर में मधी चंद जी का जो मंदिर है, उसमें दीवान रतन चंद जी उनके सगे भाई और मधी चंद जी खुद ये झाड़ू लगाते थे। कोई माली झाड़ू नहीं लगाता था, कोई नौकर झाड़ू नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि वो ईरिया समिति पूर्वक थोड़ी लगाएगा। जैसे जीव जंतु को हम देखकर कोई मरना जाए हम लगाएंगे, ऐसे वो थोड़ी लगा सकता है। हैं? अब ऐसे इसमें समझे ना, ऐसे माहौल में, ऐसे पंथ में कहां से भी आगे पटाखे। और ये कह रहे कि ऐसा जो बिल्कुल वीतरागी धर्म, इस वीतरागी धर्म में शुभ और अशुभ राग के भेद कहां से आ गए, क्यों उसकी बात मत करो। यहां ये तो कहते हैं आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये भी व्यवहार है और छोड़ने लायक है। ये जो गाथा में व्यवहार बताया जा रहा है वो रखने के लिए नहीं बताया जा रहा है, छोड़ने के लिए बताया जा रहा है। क्यों? जिसे इसे जो है छोड़ना है। तो क्या कहते हैं, देखो इस ज्ञायक भाव के बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो। इसके तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। बोलो क्या नहीं है? दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। अब भाषा ऐसी है तो एक भेद नहीं है, लेकिन भाषा ऐसी है, आप समझेंगे ना। तो अभी इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी और इतनी बात हमारी माननी पड़ेगी कि साहब इसने तो ये लिखा है, इसने तो ये लिखा है, इसने तो ये लिखा है, तो नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि ये जो कल पढ़ा था ना, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में निष्णात नहीं है ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को। ये गाथा किनको समझा रहे हैं? निकटवर्ती शिष्यों को। और वे कैसे हैं शिष्य? निष्णात नहीं है माने परिपक्व नहीं है, अपने बात में पूरे चतुर नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को काय में निपुण नहीं है वो, के धर्म और धर्मी में ये नहीं जानते हैं। ये तो पुण्य को धर्म मानते हैं, पाप को धर्म मानते हैं, कुछ शुभ भाव को धर्म मानते, कुछ अशुभ भाव को धर्म मानते, कुछ शुद्ध भाव को धर्म मानते। ये कोई धर्म भरम यहां नहीं है, और कोई धर्म द्रव्य को अधर्म मानते, अधर्म द्रव्य वो भी नहीं है। ये तो कल बताया था ना कौन धर्म है कौन धर्मी। आत्मा में जो अनंत गुण है उन्हें सब सब धर्मी में धर्म में सब ले लेना, गुण भी धर्म भी शक्तियां भी स्वभाव भी, उसको भेद नहीं करना। और वो धर्म जिसमें है उसका नाम धर्मी। तो ये अपना भगवान आत्मा हुआ धर्मी, पुद्गल का परमाणु हुआ धर्मी, आकाश द्रव्य हुआ धर्मी, कौन काल द्रव्य हुआ धर्मी, और उसके अनंत गुण हुए धर्म। अब धर्म और धर्मी में निष्णात नहीं है लिखा ना, क्या लिखा आपका निकट धर्मी को बताने वाले कितने ही धर्मों जो धर्मी में निष्णात नहीं है, वो तो धर्मों को तो जानते हैं लेकिन धर्मी को नहीं जानते। तो उनको उन धर्मों के द्वारा धर्मी को समझाते हैं, क्योंकि अपना सिद्धांत है कौन सा, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, है ना, कहां है इतना कहां है देश का में, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, तो धर्म उन्हें ज्ञात है और धर्मी से वे अज्ञात हैं, तो उन धर्मों के माध्यम से इस धर्मी को समझाते हैं। मैं इधर सर्कस देखने गया था तो उसमें जोकर आया, दूसरा जोकर आया एक बकरे को लेकर के, आंख की देखी हुई बात है 8-10 वर्ष की उम्र में, तो एक जोकर बोला उस पर रख करके पुट्ठे पे हाथ रखे कि एक क्या है, उसका मतलब एक क्या है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, समझिए ना, तो उसने कहा कि एक पुट्ठा है, तो उसने इधर हाथ मारा कि एक क्या है, कि एक पुट्ठा है, तो इधर हाथ मारा कि एक क्या है, कि ये भी पुट्ठा है, कि एक क्या है, कि ये भी पुट्ठा है, कि पुट्ठा ही पुट्ठा है, कि बकरा भी है, मोना पुट्ठा हुआ धर्म और बकरा हुआ धर्मी, जो यही देखा कि ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये कान है, और बकरा जिसको दिखाई ही नहीं दे, ऐसा शिष्य है। ये ज्ञान दर्शन ये तो सब दिखाई देते हैं, ख्याल में आए ना, उनकी पर्याय ये तो सब दिखाई देते हैं, लेकिन वो पर्याय वाला गुण वाला गुण पर्याय बद द्रव्यम है ना, बद बद है ना, बद माने बाला, वो गुण पर्याय वाला द्रव्य दिखाई नहीं देता है, ऐसा शिष्य है बस वो। उन्हें शिष्य की परिभाषा कर दी पहले के, कैसे शिष्य को समझा रहे हैं, जैसे टोडरमल जी का है ना, टोडरमल जी का जो शिष्य है वो समय सार उसे कंठस्थ है, आत्म क्या ठीक कंठस्थ है, गोमठ सार कंठस्थ है, सारे शास्त्रों में पारंगत है, क्योंकि उन्होंने जितने भी प्रश्न डाले हैं, आगम के प्रमाण उद्धृत किए हैं, वो सब शिष्य के मुख में डाले हैं, उन्होंने उत्तर में कहीं प्रमाण नहीं दिया, शिष्य कहता आप ऐसा कहते हो और समय सार में तो ऐसा लिखा है, आत्मख्याति में तो ऐसा लिखा है, गोमठ सार में तो ऐसा लिखा है, वो बताता है शिष्य है? और उनकी एकमात्र स्टाइल, कभी टोडरमल जी की नकल करनी हो ना स्टेज पे तो मैं बता देता हूं, तुमने कहा सो ठीक इतना बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे टोडरमल जी बोल रहे हैं क्या, लेकिन परंतु किंतु उसकी अपेक्षा ए है, इसकी अपेक्षा ए है, वो सारी अपेक्षाओं का निर्णय करते हैं, तो मतलब मैं कहूंगा पंडित टोडरमल अपेक्षाओं के पंडित हैं, समझे ना, इससे अभय कुमार जी ये सिद्ध नहीं होता है कि उस समय कितना किस टाइप का ज्ञान होगा, अपेक्षा लोग नहीं समझते होंगे, सब खूब शास्त्र पढ़ते होंगे और अपेक्षा नहीं समझते होंगे, क्यों ऐसा ही होगा ना माहौल, आज भी अपना ऐसा ही माहौल है, आज भी अपना ऐसा ही माहौल है कि हम उन अपेक्षाओं को नहीं समझते हैं, क्या नहीं हमारा तत्व तो निरपेक्ष है, अरे भैया उसका अलग अर्थ है, और ये अपेक्षा वाला अपेक्षा निरपेक्ष वो नहीं है बीरन जी, वो निरपेक्ष का मतलब ये है उसे किसी दूसरे की सहयोग की रंज मात्र भी अपेक्षा नहीं है, समझ में आए ना, अभी मैं प्रचन कर रहा हूं और बीच बीच में कोई मेरे बता ऐसा श्लोक बोल के बताए, फिर मैं कोई मेरे से पूछे मैं जवाब दूं उसके पहले वो जवाब देने लग जाए, तो मैं कहूं भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूं मुझे आपके सहयोग की जरूरत नहीं है, है ना, क्या सहयोग की जरूरत नहीं है, माने एक जैन साहब का क्या मतलब है कि डिस्टर्ब मत करो चुपचाप बैठे रहो, समझे ना, तुम मुझे सहयोग की बात करना चाहते हो और मैं उसे डिस्टर्बेंस मानता हूं, तो ऐसे भगवान आत्मा को किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है, वो मोक्ष में जाएगा अपने ही भरोसे जाएगा, अपना काम खुद ही करना पड़ेगा तभी कि सबको होगा, ये अर्थ है निरपेक्ष होने का अर्थ, मैं किसी की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, ख्याल में ना। एक श्वेतांबरों का एक नाटक था, उसमें जो चंदन वाला का नाटक था, नाटक का नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पढ़ा था उसी 10-12 वर्ष की उम्र में। तो उसमें जैसे नाटकों के बीच में हास्यरस पैदा करने के लिए विदूषक आते हैं ना बीच बीच में, तो हास्यरस पैदा करने के लिए वहां एक पंडित पंडितानी को रखा था और बाकी नाटक तो वो चलता था। और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उस पंडितानी का नाम कमला था। क्या दादा ने भी पढ़ा होगा। तो उसने वो हास्य कैसे पैदा किया था मैं बताना चाहता हूं, इसके लिए बताना चाहता हूं कि कितनी बड़ी बात उसे मजाक के तौर में प्रस्तुत किया था। क्या बात थी कि कोई वो पंडित जी किसी से कह रहे थे कि कोई बात आई होगी प्रश्न में कि पंडित रोटियों की चिंता नहीं करता। गुरुदेव ने कहा था ना कि हम रोटियों के लिए धर्म नहीं हमने अपनाया है, उनको मर जाऊंगे, वे रोटियों की चिंता नहीं करते हैं अथवा खाते पीते नहीं है, समझे ना। तो घर में पंडितानी ने खाने ही नहीं बनाया, क्यों तो रजाई क्यों नहीं, पंडित तो खाते ही पीते नहीं। तो ऐसे बढ़ाते थे कैसा पंडित जी ने, वो मंदिर की बात है, मंदिर की बात मंदिर में, घर की बात घर के व्यंजन अलग होते, जैसे मजाक उड़ाते कि नहीं उड़ाते, ऐसी तत्व ज्ञान की बात की मजाक उड़ाई थी, जबकि वो बात 100% सत्य है। ऐसा लगता है मुझे जिसने वो लिखा होगा स्वामी जी की मजाक उड़ाने के लिए लिखा होगा, ये परम सत्य है कि मैंने तुम हमें रोटियों के दम पर दबाना चाहते हो, हमें तुम खरीदना चाहते हो तो तुम खरीदे नहीं जा सकते। तो उसने ये कहा कि रोटियों की हम चिंता नहीं करते का मतलब ये कहां है कि हम रोटियां नहीं खाते। नहीं आप बोले, मुझे याद है कम 10 वर्ष से ज्यादा के नहीं होऊंगा जब मैंने पढ़ा था, उस वक्त भी मुझे वो अच्छा नहीं लगा था कि ये तो सिद्धांत की बात है, हम किसी की परवाह नहीं करते। क्या है ना, तो ये इस बात का मजाक उड़ाया था, जबकि वो परम सत्य था। जिस बात का मजाक उड़ाया था वो प्रतिपादन के काबिल था, उसका प्रतिपादन होना चाहिए था। तो भगवान आत्मा निरपेक्ष है, माने किसी की परवाह नहीं करता है, उसका मतलब है कि उसे है निरपेक्ष, और जब समझाया जाता है और समझा जाता है तो वो अपेक्षा से समझाया जाता है, अपेक्षा से समझने और समझाने से उसकी निरपेक्षता खंडित नहीं होती, और उसको निरपेक्ष होने से ये अपेक्षावाद का जो सिद्धांत है साधवाद ये खंडित नहीं होता, समझे ना। वो आत्मा निरपेक्ष ही रहेगा, उसका अर्थ है किसी परद्रव्य की उसे रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, समझे ना। अमरचंद का एक वाक्य है कि मेरी समझ में नहीं आता, प्रवचन सार में है टीका में, कि इतना वस्तु का स्वरूप इतना हाथ में रखे हुए औंले जैसा स्पष्ट है, फिर भी ये सारा जगत निमित्तों की खोज में इतना व्यग्र क्यों होता है, ये मुझे आश्चर्य होता है। कौन सी कथा की टीका है, 81-82-83 यही होगी, कई टीका दो कथा पहले भी हो सकती है क्या। फिर इसी बात पर मैं फिर समझाता हूं इसी बात को कि निमित्तों की खोज में इतने व्यग्र क्यों होते हैं। तो निमित्त का निषेध कर रहे, वो निमित्त को नहीं मानते, ये कितने साफ शब्दों में कह रहे हैं कि निमित्तों को खोजने की जरूरत नहीं है, जो कार्य होना है निमित्त तो आकाश से उतर के आएगा। आदिनाथ जैसा निमित्त था और मारीच की समझ में नहीं आया तो नहीं आया, और शेर की पर्याय में आना था तो वो उन्होंने बाकायदे निमंत्रण भेज के मुनिराजों को नहीं बुलाया था, और न उनने प्लेन के टिकट भेजे थे क्यों, और न उस शेर ने उन्हें आहार की व्यवस्था करी थी। बोलो क्या किया था, यानी जो हमारे वक्ताओं के जो श्रोताओं को जो करना चाहिए मान सम्मान और उसकी व्यवस्था, वो कुछ नहीं की थी उनने, और बिना बुलाए दो दो आ गए थे समझाने के लिए। तो तुम निमित्तों की खोज में व्यग्र क्यों होते? खोज की वो निमित्त नहीं होता, देशना लब्धि में नहीं होती है, कहां कह रहे हैं? कैसा तुम कहां से महावीर भगवान की बात करते हो, अपनी बात तो करते नहीं है। फटाफट भगवानों को भरत चक्रवर्ती व तुम्हारे हाथ में दो चार आदमी है, उनको बस परोस देते हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जो सब जने यहां बैठे हैं, अपने छाती पे हाथ रख करके जवाब देना कि कोई आदमी बच्चा पैदा होता है, आपको जो मनुष्य पर्याय मिली है वो बिना मां बाप के मिली है, वो मां बाप उसमें निमित्त हैं कि नहीं है, अनिवार्य निमित्त हैं कि नहीं है, वो किस किस ने अपने मां बाप की खोज की थी और उसको उनका चुनाव करके वो आए थे, और जिस भी पर्याय से इधर आए थे स्वर्ग से नरक से, क्यों? तो पहले इंतजाम एक दफे देख के तो गए होंगे कि वहां इंतजाम है, तो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन कहीं मैं जाऊंगा कहां? अब भटकत फिरे हैं, वो आत्मा भटक रही, हां वहां जगह नहीं मिल रही उसे, क्यों है? हम आए और हमें मनुष्य पर्याय में आना था, तो मां बाप तो पहले से ही तैयार थे, ठीक है नहीं थे? बताओ, अब तो तुम्हारी बात है ना। किसने चुना है, किसने ये किया है? मैं जब कभी ये बात ना लोगों को बहुत अटपटा लगता है, दो बातें मैं कहता हूं, अभी मेरे आया तो मैं कह देता हूं, मेरे मन में आई तो बहुत उपयोगी बातें हैं। मैं अपने इन बच्चे बच्चियों से कहता हूं कि क्या फैमिली प्लानिंग लगा रखा, आने दो ना 10-5 बच्चे, तुम्हारे पास रोटियों की कमी है क्या? पैसा आ रहा है, कमा रहे हो, खा रहे, आने दो। क्या जमाना नहीं दादा, आप समझते हो हाँ तुम बहुत समझदार हो गए हो? अरे भाई, इतना पवित्र घर है, शुद्ध छना पानी, इतना तत्व का वातावरण, क्यों? और उसमें किसी जीव को आने से तुम क्यों रोकते हो? मेरी बिल्कुल पक्की मान्यता है, क्या कहना? अब देखिए 5-6 थे, 2 शास्त्री हो गए, अब बाद में मुझे अकेला रहना पड़ गया, है ना परेशानी? आने दो, यहां आएंगे और कहीं जाएंगे बेचारे, तो हिंदू मुसलमान के घर में पैदा होंगे, कहीं कुछ होंगे, क्या मांस मदरा खाना पड़ेगा, कितनी दुर्दशा होगी, क्यों? तो ये लोगों पे लोग हंसते हैं इस बात पर, लेकिन मेरी ये बात है कि शुद्ध जो सात्विक तात्विक वातावरण हमारे घर हैं, आने दो, कुछ मोक्षों की संख्या बढ़ने दो, ना तुम पैदा करते हो, ना तुम नया बनाते हो, ना बाहर से या माल को क्या बोलते हैं वो इम्पोर्ट करने देते हो, होगा क्या इसका? एक बात तो ये है, दूसरी अभी मैं भूल रहा हूं, आएगी का क्षण में आप तो मैं बताऊंगा, ऐसी ही दूसरी बात है, हैं? क्या कि भाई उनकी तो समझ में आता है कि उनकी रोटियों की व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे, भाएंगे, भूखों मरेंगे, ये होगा वो होगा, अब ऐसा तो कुछ है नहीं है? आज से ही सब धंधा पानी बंद कर दें, ख्याल में आई ना, तो एक नया पैसे का काम नहीं करें तो 3 पीढ़ियों तक तो कोई भूखों नहीं मरेगा, क्यों? इतना ढेर तो इकट्ठा कर लिया ना परमात्मा, क्या है? तो मैं अब एक ऐसी ही महत्वपूर्ण बात दूसरी है, उस वक्त मेरे ध्यान में से निकल गई है, जब कभी आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। कई लोगों को लगता है कि ये बात क्या कर रहे हैं, जो लोग जो पक्ष में ये बात जो नहीं है, है ना, तो ये नहीं, क्या मतलब कि वो मैं कोई फैमिली प्लानिंग के विरोध में नहीं हूं, लेकिन एक आरोप भगवान महावीर पे लगता है, आपको मालूम, मैंने पढ़ा है इतिहास की किताब में, भगवान महावीर ने और बुद्ध ने बहुत बड़ा नुकसान किया इस भारत देश का, आपने पढ़ा भाई? पहले मैंने सुनाई है कभी बात, फिर सुनाता हूं, देखो उसमें ये लिखा था कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया तो सारे बुद्धिमान लोग, क्योंकि इनकी पकड़ राजाओं महाराजाओं में बड़े बड़े लोगों में थी, राजकुमार थे ना, तो उनको सबको ब्रह्मचर्य दे दिया। तो उनकी तो नस्ल खत्म हो गई और ये सब समझ गए ना मिलेच्छ लोग, इनकी उनने मानी नहीं, तो अब जो उन्हीं उन्हीं की संतानें बची है सारा देश में, वीर तो खत्म हो गए पर ऐसे कैसे रह गए। ये आरोप मैंने पढ़ा है, आप कौन समझेंगे कि नहीं समझेंगे, बुद्ध पे और महावीर पे ही दोनों लगाया और इसके विरोध में वैष्णव धर्म ने एक सिद्धांत बनाया, कौन सा, अपुत्र से गत्र नास्ती, सुना आपने कभी, मोक्षनाथ प्रकाशक में आया है कि कोई संन्यास लेने जाता था उनके यहां तो कहते पहले बेटा शादी करो, बच्चा पैदा करो, उसे पढ़ाओ लिखाओ बढ़ा करो, आजीविका से लगाओ, फिर आना दीक्षा लेने। क्यों, अपुत्र से गत्र नास्ती, कि तुम बिना पुत्र के आ जाओगे और दीक्षा ले लोगे, समझ में आई ना तुम्हारी में, तो तुम्हें मोक्ष में जाओगे तुम्हारा रास्ता वैकुंठ में रास्ता बंद मिलेगा, अपुत्र की गति नहीं हो सकती है। शंकराचार्य को बहुत तकलीफ हुई थी, शंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य लेके दीक्षा ली ना तो बहुत सख्त विरोध हुआ था, उनके यहां तो सिद्धांत है अपुत्र से गतिर नास्ती है ना, तो वो उनको कोई नस्ल की समस्या खड़ी हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूं तो महावीर पर न दोष देना चाहता हूं ना उनपे गुण, में तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आप समझ रहे ना, तो मैं तो ब्रह्मचर्य लेने वालों को तो रोकता नहीं हूं, लेकिन नहीं लिया है तो शुद्ध सात्विक घरों में आने दो लोगों को, क्यों स्थिति में तुम झंझट में पड़ते हो ज्यादा है? निरपेक्ष क्या है और सापेक्ष क्या है, और भगवान आत्मा निरपेक्ष है उसका क्या अर्थ है, वो निरपेक्ष और सापेक्ष वाला निरपेक्ष और सापेक्ष अलग है, और ये तीसरा निरपेक्ष है कि एक द्रव को दूसरे द्रव की कोई अपेक्षा नहीं है, हम सुने ना, कोई अपेक्षा नहीं है एक दूसरे को द्रव की, ये है निरपेक्ष। पराधीनता रंच मात्र भी नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता है, हरेक अपने द्रव की पर्याय का कर्ता स्वयं है, उसमें रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है, इसका नाम है निरपेक्ष, और उसका कथन सापेक्ष होता है। और हमारा जो नए ज्ञान है गुरुदेव के प्रवचन में आया बहुत अच्छा आया था, क्यों, प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, परोक्ष है और शुद्ध ज्ञान के भेद नए हैं तो परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष कहां से हो जाएंगे, कह रहे थे ना, सुना था फिर है? तो ये कहते हैं धर्म, एक धर्म के जो धर्मी में निष्णात नहीं है, माने ज्ञान को जानते हैं, दर्शन को जानते हैं, चारित्र को जानते हैं, सबके गीत गाते हैं, लेकिन ये सब जिसमें हैं और किसी तरह का भेदभाव नहीं है, अभेद अखंड है, दुनिया की कोई ताकत इनको जुदा नहीं कर सकती, भेद नहीं है, माने भेद नहीं है, माने ज्ञान को इधर ले जाओ दर्शन को इधर ले जाओ ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो अखंडता है वो अखंडता को नहीं जानते ऐसे शिष्य हैं उनके, जिनको यहां भी समझा रहे, क्या ये जो धर्मी में निष्णात नहीं है, धर्मों में तो निष्णात हैं, तो उनसे कह रहे भैया ये ज्ञान दर्शन चारित्र धर्म है जिसमें तुम निष्णात हो, इनको जो आत्मा में कहा है वो तो व्यवहार से कहा है, भेद करके समझाया है। आचार्य जयसेन ने इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि अग्नि में तीन गुण हैं, जैसे ने इसी गाथा की टीका में दिया है, ये जो किताब आपके पास है इसे पढ़ के देख लें, उसमें लिखा है डॉक्टर साहब घर पे पढ़ लेना शांति से, मेरे सुन लो अभी, दाहक पाचक और प्रकाशक, ये सुने होंगे आपने नाम गुरुदेव के मुख से। अग्नि में तीन गुण हैं कि पहला गुण है कि वो जलाती है, गुण है क्या, अवगुण, एक उसमें दाहक नाम का गुण है, दाहक माने जलाना, दूसरा गुण है पाचक, माने पचाना है ना, चूल्हे की अग्नि जलाती है और पेट की अग्नि पचाती है, खाने को पचाती है कि नहीं पचाती है। और एक है प्रकाशक, जहां जलाओ वहां उजेला हो जाता है। तो ये प्रकाशक ये तीन गुण हैं, एक अग्नि के तीन गुण हैं। अब हमने अग्नि जलाई तो हमने अग्नि को पाचक दाहक, तो हमने किसी चीज को जलाने के लिए अग्नि जलाई तो फिर वो अकेली जलेगी तो वो जला देगी, उजेला नहीं करेगी। क्यों? हमने उजेला करने के लिए अग्नि को जलाया तो फिर उस हाथ से हम हाथ लगाएंगे जलेंगे तो नहीं। यानी ऐसी अग्नि कुछ जगत में आपको मिलेगी, क्योंकि हमें तो तीन में से एक काम चाहिए। कौन सा? प्रकाशक चाहिए, तो दाहक को पाचक नहीं हो वो, अब तुम्हें प्रकाशक चाहिए और इनको पाचक चाहिए। क्यों? नहीं तो चूर्ण काय को खाते हैं, मंदाग्नि हो जाती है ना डॉक्टर साहब, उसको दीप्त करने के लिए किसी को पाचक चाहिए, किसी को प्रकाशक चाहिए और किसी को दाहक चाहिए। दाहक नहीं होता तो सबसे ज्यादा परेशानी में पड़ जाते राजेंद्र भैया, कैसे कच्ची रोटी खानी पड़ती। दाहक माने अकेला जलाना ही नहीं होता है, सेकना भी वही है, आधा जलाया उसका नाम सेकना। क्यों? पूरा जला दो उसका नाम जलाना, क्यों? और आधा जलाओ उसका नाम सेकना। तो कच्ची रोटी खानी पड़ती कि नहीं खानी पड़ती? लेकिन वो अग्नि में तीन गुण हैं, लेकिन ऐसी अग्नि कहीं नहीं मिलती है जो अकेली दाहक हो कि अकेली पाचक हो कि अकेली प्रकाशक हो। तो अग्नि तो अग्नि है, वो दाहक पाचक हो प्रकाशक, तो हमने उसकी क्वालिटी है तुम्हें समझाई है। तो ये तीन भेद तो समझाने के लिए किए हैं, समझ में आई ना? ऐसे ही आत्मा में एक गुण जानना, एक गुण देखना, एक गुण ध्यान करना, रमण करना, ये तीन गुण आत्मा में हैं, तो भेद करके हमने समझाए हैं। लेकिन हमें आत्मा चाहिए और हमको ये नहीं चाहिए। देखो, हमको तो सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान नहीं चाहिए। बोलो, मिलेगा किसी जीव को आते कि दफे ऐसा हो गया होगा? और कोई को सम्यक ज्ञान चाहिए और सम्यक दर्शन नहीं चाहिए? क्यों? एक जैन साहब, मिलेगा? हमने पार्टियां खड़ी कर दी, एक सम्यक दर्शन वाली पार्टी, एक सम्यक ज्ञान वाली पार्टी। और सम्यक दर्शन वाली पार्टी सम्यक ज्ञान वाली पार्टी को गालियां देती है, अकेले ऐसा करते रहने से कुछ नहीं होगा, एक घुसने से कुछ नहीं होगा, एक घुसने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। क्यों? और जी वो ज्ञान वाली पार्टी ध्यान वालों को गालियां देती रहती है, जबकि ज्ञान और ध्यान दोनों के बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। हमारे मुनिराजों को ज्ञानी ध्यानी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? हमने तो उसमें भी दो पार्टी कर दी, हम तो कितने भेद के उपासक हैं। बोलो, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते, इसके बिना नहीं होगा, वो इसके बिना नहीं होगा। अरे वो तो दोनों के बिना नहीं होगा, और दोनों के बिना का क्या? सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, सम्यक ज्ञान तो साथ ही होते हैं भाई साहब, ये भिन्न होते ही नहीं है? अंधे को न्योतोगे तो दो आएंगे, समझ में? सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करोगे तो सम्यक ज्ञान साथ में आएगा, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। सम्यक ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करोगे तो सम्यक दर्शन साथ में आएगा, क्यों? तो दो ही आएंगे ना, तीन तो नहीं आएंगे। क्या बाल बच्चा हो गया होगा तो वो भी आएगा? क्यों? वो क्या दादा ने बताया, एक दो तीन चार क्या होता है? एक दो चार, किसी ने बताया था यहां पर प्रथम की गद्दी पे, एक दो चार, नहीं समझ में आई? जो कार्ड आते हैं ना यहां कार्ड शादी के, विवाह के, निमंत्रण के, तो उसमें एक लिखा रहता है, कहीं कहीं दो लिखे रहते हैं, कहीं कहीं चार लिखे रहते हैं, तो समझ में नहीं आता कि ये क्या है। जो समय साल की गाथा समझने वाले नहीं समझते हैं,
بھائی سیٹھی جی سب سمجھتے ہیں، سمجھا دیں ابھی حال کہ پنڈت جی ایک لکھے کا مطلب یہ تم اکیلے آنا، بیوی کو ساتھ میں لے کے مت آنا، ایک کا ارتھ یہ ہے، اور دو کا کہ دونوں آنا بچوں بچوں کو مت لانا، اور چار کا کہ سب آ سکتے ہو، یہی ہے نا. اور اپنے بندیلکھنڈ میں کیا ہے راجن بھیا؟ چول. یہ چول کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں اس کو بولتے چول پئی پاؤنے کو نیوتو. یہ سمجھ میں آئی نا کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ہمارے ہاں وہ کہ چولہا مت جلانا گھر میں. چول کا مطلب کیا ہے؟ کہ آج ہمارے یہاں آپ کا نمنترن ہے تو تمہارے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے. میں نے کیا مطلب ہوا؟ پورا گھر آنا؟ ارے نہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ مہمان آ جائے تو اسے بنا کے کھلا کے آئیں گے تو چولہا تو جل جائے گا. اب سمجھ میں آئے گا؟ چولہا نہیں جلانے کا مطلب تمہارے گھر میں آج جو مہمان آئے ہوں تو انہیں بھی ساتھ میں لانا. تو اس کی بیاخیا کرنے کے لیے آگے لکھا چول پئی پاؤنو. کیوں؟ کوئی مہمان دوست رشتے دار جیسے آ جائیں کہ جو آپ کے گھر میں جنہیں جمانا ضروری تھا آپ کو، تو ان کو بھی ساتھ میں لے کے ہمارے یہاں آنا. تو یہ آتما تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے تو چول پئی پاؤنو کا نیوتا ہوتا ہے. کیوں؟ سمجھے نا، ایک گن آئے گا تو آنند آئیں گے. بولو گنانا ہے نہیں، ہمیں تو اکیلا جان چاہیے، اکیلا جان چاہیے. ہمارا اکیلا جان نہیں ملتا ہمارے یہاں. کیوں؟ کہ ہمیں آنند چاہیے ہی نہیں، کہ جتنے میں ایک ملے گا اتنے ہی میں آنند ملے گا. بولو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اصلی امریکہ والے تو اصلی ویاپاری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹکٹ تم کو دونوں طرف کا آنے جانے کا ایک ساتھ لینا پڑے گا. ہم کیوں لیں؟ ہم تو آنے کی جب دیکھیں گے کہ نہیں چلے گا. کیسے نہیں، تم تو لوگے جھک مار کے لوگے. کیا جانے کا ٹکٹ کتنا کا؟ 20,000 کا. آنے کا کتنا کہ 20,000 کا، اور جانے آنے کا کتنا کہ 25,000 کا. بولو لینا کہ نہیں لینا؟ کیوں؟ بولو مکند بھائی، ہر آدمی لے کے جاتا ہے نا لانے کا آنے کا. کیوں؟ انہیں اتنا بڑا آکرشن رکھا کہ تم وہ آنے کا 5,000 میں ملتا ہے، وہ سالا نہیں آنا ہو تو چھوٹ جائے گا، جائے گا تو جائے گا، تو بھی لے لو. لے لو کہ نہیں لے لو؟ تو یہاں تو ہمارے آچاری تو انگریزوں کے بھی باپ تھے. ان نے کہا کہ ایک سمے درشن لو، سب میں گیان مفت میں، سب میں چارتر مفت میں، آج نہیں تو کل، بعد میں بھیج دیں گے. ایک آتما کا درشن کرو تو انند گنوں کا درشن ایک ساتھ تمہیں ہو جائے گا. یہاں تو اخنڈ کا پنڈ ملتا ہے. بمبئی جیسی دیوائیاں لگتا تھا. کیا ہمارا جے پور بہت بڑھیا ہے؟ آپ نے دو گولی لکھی کہ آپ کا پیٹ خراب ہے، دو گولی لکھو. تو ہم دو گولی منگا لیتے ہیں بازار سے. تو ایک گولی یدی بچی رہے اور نہیں آئے کام میں تو واپس بھیج دیتے ہیں، دے دیتا ہے. اور آپ کے یہاں تو ایک پتا دے گا. ایک گولی چاہیے، کم سے کم 10 کا پتا لو، ہے کہ نہیں؟ مطلب اکھنڈ ملتا ہے. ایسا لگتا ہے گرودیو کا پربھاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے. کوئی چیز وہ ملے گی ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں بھگوان آتما تو تمہیں انند گنوں کا اکھنڈ ملے گا. دھرمی اس دھرمی میں وہ نشنات نہیں ہے. دھرم میں انہیں دھرم کی مانگ ہے، دھرمی کی مانگ نہیں ہے. لیکن سمنت بھدر لکھتے ہیں نہ دھرم ہو دھرم کے بنا، مانے دھرم دھرمی کے بنا نہیں ہوتا. وہاں تم نے ایسا کہ دھرماتما کے بنا نہیں ہوتا، لیکن ارتھ تو یہی ہے نا کہ دھرم دھرمی کے بنا نہیں ہوتا. معلوم کیا میں لکھا ہے؟ بہت مارمک سب کہ ہمیں بہت دھرم پریم ہے، بہت دھرم پریم ہے. اچھا بہت دھرم پریم ہے آپ کو؟ کہ وہ بیرن جی وہ کیا ہے؟ کچھ نہیں. وہ تو کیا ہے کہ بھیا وہ اکیلا جو تمہیں دھرم پریم ہے، وہ دھرم تم کو تو لاؤ میرے پاس. کون ہے اکیلا دھرم نام کا پدارتھ ہے کہاں اس جگت میں؟ سمنت بھدر کہتے ہیں کہ وہ دھرم کسی دھرماتما میں ملے گا. وہ کوئی ویکتی دھرماتما ہوگا، سننا،
तो तुम्हें धर्म का सम्मान करना है तो किसी व्यक्ति का सम्मान करना पड़ेगा, समझना। यह है उसका न धर्म वात्सल्य के संदर्भ में है कि न धर्मो धार्मिक ही बिना, धार्मिक तो तेरे को कोई पसंद नहीं है, हमें ज्ञान पसंद है और विद्वान तो पसंद नहीं है, विद्वान नहीं चाहिए और ज्ञान चाहिए, चलेगा क्यों? बोलो मुकुंद भाई चलेगा काम? सिविल लगाना है लेकिन एक पंडित नहीं आना चाहिए, तो बैठा दो अपने सेठियों को, लड्डू खाएंगे, एक बात तो बोल नहीं सकते, सही घबराना नहीं। यहां आकर के बोलेंगे कि साहब आपको अध्यक्ष भाषण से दो मिनट तो बोलना पड़ेगा, कि नहीं साहब बोल दो मैं, आप मेरे को नहीं है, आप ही बोल दो मेरी तरफ से, नहीं तो लिख के दे दो, अभय कुमार जी लिख के दे के आएंगे तो वो पढ़ेंगे तो भी। अरे मैंने तो इनकी ये दुर्दशा देखी है, घबरा कि वो पंडित पंच कल्याण को में वो पंडित लोग एक एक लेन का पाठ लिख के देते हैं, ये अभय जी देते हैं ना, और 4,00,000, 5,00,000, 32,00,000 में स्वधर्मेंद्र बने, और एक पंक्ति बोलने में ऐसे हाथ में लेके वो मौखिक नहीं बोल सकते हैं, और पसीना छूट जाता है। क्यों? मैंने कहा तुम्हें तो हमारी महिमा बहुत आना चाहिए, क्यों? हम तो बिना पर्चा लिए घंटों बोलते हैं, क्यों? तुम्हें इसका पता तो लगना चाहिए बोलना क्या होता है, बोलो। अरे भाई ज्ञान का विचार पंडितों के बिना नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। मुकुंद भाई पंडितों के रहने की व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? पंडित जी बहुत कठिन है, तुम्हारी व्यवस्था तो कठिन नहीं है ना, तुम्हारे रहने की तो व्यवस्था है ना, तो क्या करे? पंडित यहां से जाएगा जयपुर से रोजीना, फिर आपके यहां पढ़ाने जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सुबह के प्लान से भेजेंगे, शाम के प्लान से वापिस बुला देंगे, और पढ़ाएगा हुआ क्या करेगा बोलिए? अरे तुम रहने की व्यवस्था नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पढ़ाएगा? ज्ञान का प्रचार तो करना है, रहने की व्यवस्था नहीं है, जहां 1 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं है, गलत हो गया। मैं एक समय हो गया मुझे मालूम है, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना सुनाऊं आपको, बहुत सीखने लायक है भाई कुमारी। जब आप नहीं जाते थे अमेरिका तब की बात है, मेरे से लोगों ने कहा कि पंडित जी हमको एक अच्छा विद्वान दे दो, यहां रहे हमें सबको पढ़ाए, 12 महीना घूमे, ये करे वो करे, बहुत बहुत उसने उन्होंने बहुत कही। तो मैंने कहा देखो बिल्कुल विद्वान हम आपको भेज सकते हैं, लेकिन एक मुझे बात बताओ कि आप सब इंजीनियर लोग हो, जो भी तनख्वाह आपको यहां मिलती है आप उतनी तनख्वाह उसे दोगे? मैंने बोला बहुत स्पष्ट शब्दों में, नहीं दोगे तो वो आप जैसा कैसे रहेगा यहां? आपको रहने के लिए उतनी चीज चाहिए ना, तो आपके स्टैंडर्ड में रहेगा तो उसे उतना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। 2 मिनट बाद बोले का साहब एक ब्रह्मचारी भेज दो। सही सच्ची बात बोलता हूं मैं आपसे, संदीप सुन लेना तू भी। तो मैंने कहा भेज तो देंगे, लेकिन पहली बात तो तुम हमें ये बताओ कि वो ब्रह्मचारी यहां आएगा क्यों? उसने ब्रह्मचारी विद लिया है, आत्मा के कल्याण के लिए लिया है, तो वो तो ऐसी जगह रहेगा गुरुदेव की शरण में जैसे है वहां रहेगा, जिसे उसे सीखने को समझने को मिले, क्यों? और सीखा समझाया होगा तो यहां रहेगा जहां हजारों लोगों को वो सुना सकता हो। अगर तुम्हारे 3 आदमी तो बैठे रहेंगे तो न सुनाने का मजा न सुनने को मिले, तुम सब चले जाओगे अपने घरों में कामों पे, बेचारा वो दिन कैसे काटेगा, ये है ना? तो आप ऐसे ब्रह्मचारी यहां क्यों आएगा? ब्रह्मचारी नहीं आ सकता है कि नहीं साहब, नहीं साहब कोशिश करो। हाँ करते हैं कोशिश, लेकिन ये बताओ कि वो यहां आएगा अमेरिका में ब्रह्मचारी तो कितने दिनों तक ब्रह्मचारी रहेगा? क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ दिगंबर आए सारी हुई है, दिगंबर तो एक भी नहीं है। ऐसा वहां हुआ है, सुशील मुनि एक को ले गए थे, अशोक मुनि उनका नाम था, और इस साल दो साल में ही हमने पेट्रोल पंप पे मोटर गाड़ियां साफ करते उन्हें देखा है। तो एक दूसरे मुनि महाराज थे तो वे दूसरी एक कोई लड़की को लेके भाग गए, ऐसे दो चार केस हो गए वहां। देखा कैसे, अब हरेक को ज्ञान चाहिए, धर्म चाहिए धर्मात्मा नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए ज्ञानी नहीं चाहिए, ज्ञानी चाहिए तो ऐसा ज्ञानी चाहिए कि जो हवा खाकर जिन्ना रहे क्यों और आकाश में रहे। हमारी वही मुग्ध भाई का इफेक्ट हुआ था कि हम पांच सात विद्वान देंगे, तुम पांच सात विद्वानों को रहने की व्यवस्था करोगे और हर एक को 10,000 रूपया महीना दोगे। 50,000 रूपया का महीना का बजट स्वीकार किया है। क्यों, हम घर घर पहुंचाएंगे। अब हमने तो सब तुम्हारे के ग्राहक भी तैयार खड़े कर दिए, कर दिए कि नहीं कर दिए, 100 से ज्यादा फार्म भर के आए हैं कि जिनको चाहिए विद्वान। और अन्ना जी ने हमसे कहा कि अन्ना जी विद्वान चाहिए, तो उन्होंने लोगों से कह 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 के विद्वान तैयार कर ले। बोले पंडित जी भेजें, कहां भेजें? मैंने कहा पूछता हूं मुकुंद भाई से। पर तुम्हारी देर है, बंबई में हम तहलका मचा देंगे, तुम्हारी बंबई को बदल के रख देंगे। हाल में है ना, लेकिन करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं मिलेगा आपको। ज्ञान चाहिए तो ज्ञानियों के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। यदि पढ़ना है तो अध्यापकों के बिना पढ़ाई नहीं होगी। मेरे कहने का अर्थ है कि उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था तो आपको करना ही पड़ेगी, उसके बिना ये संभव नहीं है। और ये कोई अपील नहीं है, ये कोई दान की बात नहीं है, ये तो अपने बच्चों में संस्कार डालने की बात है। ये बैठो ना, हमारा सोनू तुम्हारी बम्बई में बैठा है, पढ़ाओ करो, कठ कुछ करो, इससे करो तुम्हें ना, इसको तुम्हारे लिए रहने की जगह देनी पड़ेगी, अब खाने का भी नहीं दोगे तो चलेगा, बोलो करो, तैयार है ना, देखो तैयार। मैंने लगाई थी गिनती 17 बंबई में मेरे पास ऐसे हैं कि तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे और जहां कहो वहां अपना पैसा खर्च करके पढ़ाने जाएंगे, और बाकी और तैयार खड़ा करूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन भाई तुम्हें जागना पड़ेगा, खुद नहीं जागोगे ना तो काम नहीं होगा, हम खुद नहीं खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा, और समय बहुत तेजी से जा रहा है। आपको साक्षात गुरुदेव श्री का समागम मिला है, आप नहीं कर पाएंगे कुछ, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हो जिनने गुरुदेव के दर्शन भी नहीं किए, वे क्या करेंगे फिर बोलिए। आप नहीं बचा पाओगे इस तत्व ज्ञान को तो फिर वे क्या बचाएंगे। ये मत समझना कि आपके पास जो थोड़ा बहुत समय है उसे ऐसा ही गंवा दोगे तो कितनी बड़ी गलती हमारे से जीवन में होगी, उसकी कल्पना आप करते रहना। बनाते जाओ बिल्डिंगें, खोलते जाओ जगह जगह, फिर बाद में इनकी झाड़ू लगाने की व्यवस्था भारी हो जाएगी। धर्मात्माओं के बिना, विद्वानों के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, बोलो अभय कुमार जी क्या होगा ये। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे 8-10 तीर्थ बन गए, बहुत खुशी है मेरे को है? लेकिन ये अपने विद्यार्थी जो वहां बैठे हैं, 12 माह बैठे हैं, और तो यदि वे नहीं होते तो उनका क्या होता, वे क्या कर रहे होते। क्यों बिनन जी बोलो है? वो तो आप बना लेंगे, लेकिन विद्यार्थियों के नहीं होते तो क्या करते, वे क्या कर सकते थे। क्यों कि जो ये जो लोग जो पढ़ाते हैं, जो नहीं है ऐसे ही लोगों को रखते, वो ही होता बस खत्म। तो हम तो कहते हैं बहुत बनाओ, हमारे पास बहुत प्रोडक्शन है, हम सबको सप्लाई करेंगे माल, और तुम बनाओगे नहीं तो हम सप्लाई किसे करेंगे, बोलो। ये हमारा मटेरियल खपेगा कहां, गवर्नमेंट सर्विस में। मेरे से ऐसा भी कहा था, मैं नाम नहीं बताता हूं, कि सब विद्यार्थी आप ये सब गवर्नमेंट सर्विस में चले जाते। आपने हमसे कहा था हमें 4 विद्वान हमें चाहिए, आपने तो दिए ही नहीं। जिनने कहा था वो मर गए, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूं, अभय जी को मालूम है। मैंने कहा सेठ जी माल मार्केट भाव पे मिलता है, समझ में आई ना, वहां पे 10,000 रूपये महीना पे गए, तुम 15 बोलो कि नौकरी छोड़ के तुम्हारे घर चले आएंगे गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के, है कि नहीं? मार्केट भाव पर मिलेगा। हमसे कहते तुम हमें नहीं देते हो, हम तुमसे कहते हैं कि तुम लेते नहीं हो, क्यों? तब ये तो हमारा राजस्थान गवर्नमेंट की कृपा है, हमारे शिक्षा मंत्री से दोस्ती है, वो कहता जितने तुम्हारे तैयार हो भेजते जाओ हमारे पास, हम सबको खपाएंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया साबित हुए हैं जितने अध्यापक हमारे राजस्थान में काम कर रहे हैं ना, वो सबसे A1 अध्यापक साबित हुए हर जगह। यहां आकर इस सभा में शिक्षा मंत्री ने, उसको कटारिया जी शिक्षा मंत्री थे ना, भरी सभा में कहा कि मैंने देखा है आपके विद्यार्थियों को, जितने तैयार हों उसे मेरे पास भेज दो, इसलिए बेचारों को 2 रोटियां मिल रही हैं, तुम्हारे भरे से होते तो फिर भगवान ही मालिक है, तुम्हें कितना माल चाहिए लेकिन मार्केट भाव से मिलेगा, पर तुम्हारे पास बहुत पैसा है मैं जानता हूं, सबके घर की चांदों की थालियों में मैंने खाना खाया है, ऐसा नहीं है कि कोई घर नहीं कर नहीं सकता है, करने का दिल नहीं हो तो अलग बात है, करना चाहो तो तुम गवर्नमेंट से दुगने भी। और तुम तो कॉर्पोरेट जगत की देख रहे हैं नहीं कि दूसरे आदमी को फटाफट इसको 1 लाख रुपया महीना मिला हम 1.5 लाख देंगे, उठा ले जाते हैं कि नहीं उठा ले जाते हैं? तुम बम्बई वालों में तो कितनी ताकत है उठा ले जाने की, उठा ले जाओ ना, हमारा ऑफिस खाली कर दो, आप अपने विद्यार्थियों को हमने भेज दिया ना, लोहारिया को भेज दिया, सबको दे दिया, हम भेज जा रहे हैं, क्यों? हमारा तो नया प्रोडक्शन चालू है, हमने फैमिली प्लानिंग थोड़ी किया है। क्यों? हम नए पैदा करेंगे, हम नए तैयार करेंगे, अरे इनको हमें ही ने तो सिखाया है, एक प्रूफ रीगन देखना, जैन पथ में काम करना, भीतरा विज्ञान में कैसा करना, और नए तैयार कर लेंगे, हम तो लेंस से लगाए रहते हैं। भाई कुमार जी, एक विद्यार्थी पढ़ता ना, फाइनल में आता, सेकंड ईयर में आता, उसे बैठा देते हैं, तू जैन पथ के साथ में बैठ जा, तू भीतरा विज्ञान के साथ में बैठ जा, तू इसके साथ बैठ जा, तू बेटा सीख ले, इसलिए भी कि इन्हें कोई उड़ा ले जाएगा तो हमारा काम बिगड़ेगा नहीं, और इनका भी दिमाग ज्यादा ठीक रहेगा। देखो भाई, मैं सच बोलता हूं, मैं मजाक में मेरी बोलने की आदत है, लेकिन मैं बहुत गंभीर बात आपसे कर रहा हूं, और बहुत मार्मिक अपील आपसे कर रहा हूं, यदि गुरुदेव के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है तो ये मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी, आजे मानो काले मानो चाहे अनंत काल बाद मानो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है और नहीं है।